समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ सर फिरोजी और मेरे साथ है नीनारकल।
Hello, Sir Firozi, and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 24th of March 2026.
बिल्कुल नीना, प्रोग्राम में काफी कुछ होने वाला है। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के दृष्टिकोण ने आपसी संबंध बनाने, निर्णायक कदम उठाने और संकटकालीन परिस्थितियों का कारगर तरीके से प्रबंधन करने की देश की मजबूत क्षमता को उजागर किया है। नई दिल्ली में कल शाम एक निजी मीडिया समूह के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में जारी अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास और विकास की अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में विश्व ने भारत की नीतियों, रणनीतिक सोच और क्षमताओं को पहचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत खाड़ी देशों से लेकर ग्लोबल वेस्ट, ग्लोबल साउथ और अपने पड़ोसी देशों तक सभी के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है।
US Ambassador to India Sergio Gore has announced the upcoming visit of top defense official Elbridge Colby to India. He stated in a post on the social media that he is looking forward to welcoming the Undersecretary of War of Policy Elbridge Colby to India. This will be Colby's first official visit to India. He is widely regarded as one of the key figures behind the making of US defense policy during the second term of the Trump administration. The visit comes amid ongoing tensions in West Asia and follows recent engagements by top US military leaders. It also coincides with efforts by New Delhi and Washington to strengthen ties after trade disputes and other frictions. Mr. Colby's visit builds upon the security foundation established in October when Defense Minister Rajnath Singh and US Defense Secretary Pete Hegseth signed a 10-year defense framework aimed at bolstering security cooperation within the Indo-Pacific region. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a telephonic conversation with U.S. Secretary of State Marco Rubio yesterday. In a social media post, he said their discussions were focused on the West Asia conflict and its impact on the international economy. Dr. Jaishankar added that they both also talked about energy security concerns. The External Affairs Minister also met the envoys of the member states of the Gulf Cooperation Council, GCC, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates, yesterday. Saudi Arabia and the UAE alone are home to 8 million Indians. The meeting was also attended by the ambassadors of Bahrain, Oman, Kuwait and Qatar. The minister said on social media that he and six ambassadors had exchanged views on the conflict in West Asia. Dr. Jaishankar thanked them for their continued support to the Indian community in the region. Earlier in the day, the External Affairs Minister spoke to his Sri Lankan counterpart Vijitha Herath and discussed the repercussions of the West Asia conflict. He said, India stands committed to neighborhood first and Vision Mahasagar.
असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी।
A military transport plane with 125 people on board crashed shortly after taking off in southwestern Colombia, causing an undetermined number of casualties. At least 77 people were rescued alive. Defense Minister Pedro Sanchez said in a social media post that the plane was carrying troops when the tragic incident occurred in Puerto Leguizamo, a remote municipality in the Amazonian province of Putumayo on the Peru and Ecuador borders. The commander of Colombia's Air Force, Carlos Fernando Silva, issued a video saying that 125 people were on board the Hercules C-130 plane, including 114 passengers and 11 crew members.
और अब रुख कर रहे हैं खेल के मैदान की ओर. भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आज पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू होगी. इसके साथ ही देश में ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होगी. दो दिन की इस प्रतियोगिता में 97 महिला एथलीट सहित 278 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. आयोजकों के अनुसार ये चैंपियनशिप भारत में इंडोर एथलेटिक्स के कैलेंडर को सशक्त बनाने और खिलाड़ियों को सीजन के प्रारंभ में ही प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित की गई है. श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों का हाल. शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई से. नीना.
यस सर फिरोजी. The first additional district and sessions court, Madurai, has found all 9 police officers accused in Sathankulam custodial death case guilty of causing the death of father-son duo Jayaraj and Benix. Justice G. Muthukumaran pronounced the verdict last evening. The sentencing will take place on 30th of this month. Meanwhile, the court also directed the centre and state governments to submit details regarding the health condition of the 9 accused and their salary statements, along with other asset details. The judgment comes 6 years after the horrific incidents where Jayaraj and his son Benix were killed in custodial violence by the Shantakulam police station.
और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की. दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी. बजट से पहले मीडिया से बातचीत में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये बजट दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा पर केंद्रित होगा. उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ पानी और हवा उपलब्ध कराना है. इसी कारण इस बजट को ग्रीन बजट नाम दिया गया है. दिल्ली यातायात पुलिस ने नवरात्रि के अवसर पर झंडे वालान मंदिर में होने वाले आयोजनों को देखते हुए विशेष यातायात परामर्श जारी किया है. परामर्श के अनुसार 27 मार्च तक दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक कालका दास चौक से झंडे वालान गोल चक्कर के बीच सभी भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. यातायात पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो देशबंधु गुप्ता मार्ग और रानी झांसी मार्ग से बचें और वैकल्पिक मार्ग जैसे फैज रोड, न्यू रोहतक रोड और पंचकुइया रोड का उपयोग करें. यातायात प्रबंधन को लेकर केंद्रीय यातायात उपायुक्त निशांत गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस ने 30 से अधिक कर्मियों को तैनात किया है. उन्होंने कहा कि मंदिर के पार्किंग स्थल पर भी यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे.
Moving on to Bengaluru now. The Karnataka Assembly yesterday passed the Gram Swaraj and Panchayat Raj Amendment Bill 2026, proposing the use of ballot papers instead of EVMs for local body elections amid protests and a walkout by BJP members. Rural Development and Panchayat Raj Minister Priyank Kharge defended the move, citing concerns over transparency and a growing trust deficit in EVMs. The BJP, however, strongly opposed the bill, calling it retrograde and politically motivated. Leader of the opposition, R. Ashok, staged a protest by tearing a copy of the bill as BJP legislators walked out of the House before its passage. And some more news from Bengaluru. Amid concerns over LPG supply due to West Asia conflict, the Karnataka government has approved the expansion of piped natural gas PNG connections to over 25,000 households and 69 commercial establishments in the city. Chief Secretary Shalini Rajneesh has directed civic bodies to grant road cutting permissions on a priority basis to facilitate the GAIL project, even as the move is expected to cause temporary inconvenience to commuters.
और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर. नवी मुंबई नगर निगम ने बेलापुर के किले जंक्शन पर यातायात जाम को कम करने के लिए सिग्नल मुक्त डबल अंडरपास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ये प्रस्ताव भाजपा नेता सागर नाइक ने आम सभा की बैठक में पेश किया था. ये परियोजना हाइब्रिड एनयूटी मॉडल के तहत कार्यान्वित की जाएगी और नगर आयुक्त को आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इस प्रस्ताव में ठाणे बेलापुर मार्ग पर राबले पावने और तुर्बे में फ्लाई ओवर का निर्माण भी शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण मुंबई के यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में कथित धोखाधड़ी के संबंध में 34 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. कुलाबा स्थित क्लब का प्रबंधन सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त रूप से करती हैं. ये क्लब वित्त धोखाधड़ी के मामले में जांच के दायरे में है. ईडी के अनुसार लगभग 77 करोड़ रुपए फर्जी बैंक खातों के माध्यम से निकाले गए और आरोपियों के निजी खातों में ट्रांसफर किए गए. एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच जारी है.
अंसरफरोजी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू हैदराबाद.
जी,
all government departments are fully prepared to conduct the Shri Ram Navami Shobha Yatra in Hyderabad on March 27th in a grand and peaceful manner. A high-level coordination meeting was held yesterday, led by GHMC Commissioner R. V. Karnan, IAS, alongside City Police Commissioner Shri V. C. Sajanar, IPS. During the session, the Police Commissioner provided critical directives regarding security measures, crowd management, and a departmental coordination to ensure the smooth conduct of procession. A massive security blanket consisting of approximately 3,000 police personnel will be deployed along the route. Dedicated crime teams will be stationed to prevent incidents like chain snatching, while the she teams will ensure the safety and security of women participants. Organizers have been advised to conduct trial runs for large vehicles to avoid bottlenecks in narrow stretches.
और श्रोताओं, अब चल रहे हैं आखिरी महानगर की ओर, जहां चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल रात पश्चिम बंगाल में SIR के बारे में न्यायालय के निर्णय के बाद पहली पूरक मतदाता सूची जारी कर दी है. पूरक सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके मामलों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद न्यायिक अधिकारियों ने किया है. मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब तक करीब 29 लाख नामों के बारे में फैसला हो चुका है. ये तत्काल पता नहीं चल पाया है कि इनमें से कितने नाम पहली पूरक सूची में रखे गए और कितने हटाए गए. इससे पहले 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नाम को निर्णयधीन के रूप में चिन्हित किया गया था. श्रोताओं, महानगरों की जानकारी के बाद आपको अब देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी. शुरुआत कर रहे हैं एक बार फिर राजधानी दिल्ली से. राजधानी दिल्ली की बात करें तो आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुंबई में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और नीना, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
श्योर. Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 23 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है कि इतिहास की किताब को खोला जाए और आपको बताएं कि आज का दिन यानी 24 मार्च खास क्यों है और आज के दिन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी. सबसे पहले नीना बात करते हैं, आज एक बहुत ही खास दिन मनाया जा रहा है, आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के हानिकारक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। 1982 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। 24 मार्च को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में तपेदिक दिवस का आयोजन होता है।
And also, Sir Firozi, I remember when I was a child, I watching this movie, Anand, featuring Amitabh Bachchan and...
बहुत classic movie हम सभी ने देखी होगी.
Yes, and based on tuberculosis and how that awareness spent was spread for among the people.
जी.
So, World Tuberculosis Day is observed every year on March 24th to raise awareness about the need to eliminate TB, the world's deadliest infectious disease. India has been observing this day since 1982, along with global community. Despite progress, TB will impact millions, posing serious health, social and economic challenges. This year's theme, Yes, We Can End TB, Commit, Invest, Deliver, highlights the importance of stronger commitments and action, especially against rising drug-resistant TB. Under the National Tuberculosis Elimination Program, NTEP, India has strengthened its TB response with advanced diagnostics, innovative policies, private sector partnerships, and a patient-first approach. President Draupadi Murmu stressed that tuberculosis continues to pose a significant public health challenge affecting millions of lives across the world. President Murmu noted that the TB Mukt Bharat Abhiyan has made remarkable progress in expanding early diagnosis, ensuring free treatment, strengthening nutritional support, and improving patient care.
और नीना अब कुछ और घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं जो आज ही के दिन घटित हुई।
Yes, in today's history, we have 1854, first long-distance telegram message was opened between Agra and Calcutta at a distance of 1,300 kilometer.
और आज ही के दिन 1855 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा।
In 1947, Lord Louis Mountbatten came to India. He was officially sworn in on March 24, 1947, and tasked with overseeing the transfer of power to India.
और इससे एक साल पहले वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था।
In 1968, the second Indian-made rocket, Menaka, successfully launched at the Tumba station. In 1977, Morarji Desai, elected leader of Janata Party and sworn in as the Prime Minister of India at New Delhi. Later, he formed his cabinet. He was in the office of Prime Minister till July 28, 1979. This was first non-Congress government in India. In 1987, first developmental launch of New Generation Rocket, ASLV, stretched Rohini satellite series, STRS-1. This carried payload for launch vehicle performance monitoring and for gamma ray astronomy. This plunged within 2 minutes and 40 seconds of its launching.
और 2007 में आज ही के दिन मैथ्यू हेडन ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक लगाया। हेडन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 66 गेंद में शतक लगाया था। 2011 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने महज 50 गेंद में शतक लगाकर हेडन का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं 2008 में भूटान में नेशनल असेंबली के लिए चुनाव करवाए गए, इसी के साथ भूटान आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र बना। श्रोताओं, अभी हमने जिक्र किया उन घटनाओं का जो आज ही के दिन घटित हुई, अब हम याद करेंगे उन महान व्यक्तित्वों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। इस क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह का, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने कहानी, गद्य, काव्य, उपन्यास, संस्मरण, नाटक सभी विद्याओं में साहित्य की रचना की। इनका संबंध देश के अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से रहा। राधिका रमण प्रसाद सिंह की गणना हिंदी के यशस्वी कथाकारों और खास शैलीकारों में होती है। कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी, इनके लिखे कुछ कहानी संग्रह हैं। वहीं इन्होंने नवजीवन, प्रेम लहरी जैसे गद्य काव्यों की भी रचना की। राम रहीम, पुरुष और नारी, सूरदास, संस्कार, पूरब और पश्चिम इनके लिखे उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ लघु उपन्यासों की भी रचना की, जिनमें नवजीवन, तरंग, माया मिली नाराम, मॉडर्न, कौन सुंदर कौन और अपनी अपनी नजर, अपनी अपनी डगर जैसे लघु उपन्यास शामिल हैं।
Today we remember Henry Longfellow. He was an American poet and educator. His original works include the poems Paul Revere's Ride, The Song of Hiawatha, and Evangeline. Much of Longfellow's work is categorized as lyric poetry, but he experimented with many forms, including hexameter and free verse. His published poetry shows great versatility, using anapestic and trochaic forms, blank verse, heroic couplets, ballads, and sonnets. Typically, he would carefully consider the subject of his poetic ideas for a long time before deciding on the right metrical form for it. Much of his work is recognized for its melodious musicality. As he says, "What a writer asks of his reader is not so much to like as to listen." Let's listen to this inspiring recitation of one of Longfellow's poems, A Psalm of Life.
Be not like dumb-driven cattle. Be a hero in the strife. Trust in no future, however pleasant. Let the past bury its dead. Act, act in the living present. Heart within and God o'erhead. Lives of great men, all reminders, we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, sailing o'er life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait.
Enrique Granados was a Spanish and Catalan composer and pianist, along with Isaac Albéniz, Joaquín Malats, and other pianists, who was part of the modern Catalan school of piano initiated by Pere Tintoreri. He is known for his piano works such as the Goisaxas Suite, on which he also based the opera of the same name. He created a piano school in Barcelona, the Academia Granados, which has produced a long list of talented pianists, with much notable figures as Frank Marshall and Alicia de la Rocha.
आज थोगुलुवा मीनाक्षी अयंगर सौंदराजन जी की जयंती है। ये लोकप्रिय रूप से TMS के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय कर्नाटक संगीतकार और तमिल सिनेमा में 6.5 दशकों से अधिक समय तक पार्श्व गायक रहे। इन्होंने 3,162 फिल्मों के 10,138 से अधिक गाने गाए। इनमें भक्ति, अर्धशास्त्रीय, कर्नाटक, शास्त्रीय और सुगम संगीत गीत शामिल हैं। इन्होंने 1943 से शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम देना शुरू किया। TMS ने तमिल फिल्म उद्योग में MG रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन, NT रामाराव, जेमिनी गणेशन और ए नागेश्वर राव जैसे अभिनेताओं और कलाकारों को अपनी आवाज दी। कमल हासन, रजनीकांत, विजयकांत, सत्यराज, राजेश प्रभु और विजय कुमार जैसी कई नई पीढ़ी के अभिनेताओं को भी इन्होंने अपनी आवाज दी। तमिल के अलावा इन्होंने सौराष्ट्र, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी और मलयालम सहित अन्य भाषाओं में भी गायन किया। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में एक पार्श्व पुरुष पार्श्व गायक के रूप में पहला फिल्म गीत इन्होंने 1946 में 24 साल की आयु में गाया। इन्हें साल 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Blanco Brown is an American country rapper, singer, songwriter, and record producer who has produced for Fergie and Pitbull. Brown's debut single, The Get Up, was released in April 2019 and as of October 2022 has over 300 million streams on Spotify. In June 2019, Brown debuted on the Billboard charts, appearing at number 41 on the emerging artist The Get Up, later topped the Hot Country Songs chart and reached the top 20 of the Billboard Hot 100. Brown posted a YouTube video with country music artist Lainey Wilson to teach people how to do the dance. The Get Up challenge increased in popularity after the video was released and was featured in over 130,000 videos on TikTok. Dear listeners, good morning again from the Akashwani studios as you get up to the Get Up song.
To me, yeah. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out. To the left, to the left now. To the right, to the right. Now take your left hand and put it on your side. Gonna roll your shoulders. Do the slip and slide. This next part's my favorite part cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out.
मुत्तुस्वामी दीक्षितर की भी आज जयंती है। ये दक्षिण भारत के कवि और रचनाकार थे। वे कर्नाटक संगीत के तीन प्रमुख लोकप्रिय हस्तियों में से एक रहे। इन्होंने 500 से अधिक संगीत रचनाएं की। कर्नाटक संगीत की गोष्ठियों में इनकी रचनाएं बहुतायात में गाई और बजाई जाती हैं। मुत्तुस्वामी दीक्षित को वीणा पर प्रवीणता प्राप्त थी और वीणा का प्रदर्शन उनकी रचनाओं में साफ देखा जा सकता है। उन्होंने भगवान मुरुगन या मुर्गा या कार्तिक की प्रशंसा में कई गीत भी रचे। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी एक रचना गायिका एम सुब्बुलक्ष्मी की आवाज में। महंत जिन्हें उनके मंच नाम पापोन से भी जाना जाता है, ये पार्श्व गायक और संगीतकार हैं। पापोन ने असमिया के अलावा हिंदी, बंगाली, तमिल और मराठी जैसी कई भाषाओं में गायन किया है। पापोन ने वर्ष 2006 में फिल्म स्ट्रिंग्स बाउंड बॉय फेथ के गीत ओम मंत्र से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। 2015 में इन्होंने फिल्म दम लगा के हईशा के लिए मुंह मुंह के धागे और हमारी अधूरी कहानी में हमनवा गीत गाया।
तेरी उंगलियों से जा मुझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के हाये सुलझे तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना।
Prahlad Kakkar is an Indian ad film director and a renowned name in the field of advertising. Prahlad has won several awards for technical excellence, innovation and creativity in advertising over the years in India. Prahlad Kakkar founded Genesis Film Production Private Limited in 1977 after assisting Shyam Benegal, one of the India's most renowned art house filmmakers, on films such as Ankur, Manthan and Bhumika, and Sarfirozi. The movie Manthan, for which Prahlad Kakkar was the assistant director, is the first crowd-funded movie in India, inspired by the milk movement in Gujarat. Around 500,000 farmers came together to fund this movie. Let's listen to this song from the movie Manthan.
Thank you.
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सर फिरोजी और नीना अरकल को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।